नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के युद्ध की, और ये भी बात करेंगे कि भाई इसकी टाइमिंग क्या है। मतलब आज भारत में चुनाव आरंभ हो रहे हैं और आज इसराइल ईरान पर अटैक कर रहा है, और ईरान कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है? ये कोई भारत ने फिक्स मैच कराया क्या? आइए जानते हैं आदि अचिन से। स्वागत है आपका आदि। क्या हो रहा है भाई?
नमस्कार सर।
मोदी मोदी जी इतनी वो हो गई है कि भाई पहले पहले बालाकोट में किया था, आप कह रहे कि नहीं ऐसा करते हैं, ईरान पे ही करवा देते हैं और इसराइल से करवा देते हैं, नहीं तो पाकिस्तान से, नहीं तो नहीं करवाया कहीं, कुछ पता नहीं है।
जैसे जयशंकर गया था ना, जयशंकर जी गए थे ईरान, और ईरान ने तभी तभी पाकिस्तान को जाके टोका था क्योंकि जयशंकर ने बोला था उनको। ये तो वही बात हो गई सर। पाकिस्तानियों में बड़ा ये चला था कि भारत ने अटैक कराया पाकिस्तान पे ईरान से बोल के। तो भारत बड़ा पावरफुल कंट्री है यार, क्या बात कर रहे हो सर। मोदी साहब इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, मोदी साहब बन रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये तो छोटी बात है, पाकिस्तान को समझना चाहिए किस जगह पे बैठा है। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है सर।
ये तो बात है, एक बात और ऐड कर दूं इसमें कि ये तो बात पक्की है कि ईरान ने आईएसआई से ट्रेनिंग तो अवश्य ली है, और हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, केवल
नहीं, कौवे
पटाखे।
कौवे मरे, कौवे मरे, कौवे
कौवे
मरे,
मरे,
कौवे
कौवे मरे, एक एक पेड़ भी
मरे।
गिरा।
नहीं सर, इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज मेरे को क्या दिखता है सर, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक है। दिस इज अ गेम दैट द वेस्ट ट्राइड टू प्ले, और अभी भी वो गेम प्ले में है। वेस्ट के हिसाब में मैं इसको मानता नहीं सर, आई डोंट अग्री विद दिस वेस्टर्न नैरेटिव। बट जो मेरे को दिखता है कि वेस्ट को ये दिख रहा है कि यार रशिया, चाइना, ईरान, ये ना एक एक्सिस टाइप बन रहा है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया भी है, उसके अंदर तुर्की भी है। तो कहीं ना कहीं यार ये एक्सिस को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये तीनों कट्ठे हमको तंग करेंगे। तो रशिया को तो पकड़ रखा है सर, रशिया को पकड़ तो रखा है, लेकिन रशिया वॉज विनिंग। अगर आप देखिए पिछले थोड़े टाइम में रशिया के साथ क्या हो रहा है सर, पिछले करीब 2 महीने के अंदर रशिया की 9 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है ब्लैक सी में। ही हैज लॉस्ट मोर देन अबाउट 15 ऑड एयरक्राफ्ट। अटैक्स रशिया के अंदर हुए हैं ऑन देयर एयर बेसिस, ऑन देयर ऑयल रिफाइनरीज, और ऊपर से आईएसकेपी को यूज करके एक मॉस्को के अंदर भी अटैक कराया गया, जहां पर रशिया को बोला गया बेटा तू जरा अंदर भी देख ले। तो रशिया इस टाइम पे इधर उधर देखता है, बोलता है भाई यार ठीक है मैं जीत रहा हूं, उस टाइम पे भी जीत रहा था, अभी भी जीत रहा हूं, बट आई एम नाउ फेसिंग लॉसेस। आज सुबह रशिया का एक TU-42, TU-142 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे ऐसे गोल गोल आग लगी हुई नीचे आ रहा था। देखिए सर, फाइटर एयरक्राफ्ट लॉस इज अ बिग थिंग, बट आप स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूज लूज करते हो ना सर, दीज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आर नॉट देयर इन प्रोडक्शन, रिप्लेस नहीं कर सकते आप इसको। सुखोई को तो आप दूसरा सुखोई लेकर रिप्लेस कर दो, हाउ डू यू रिप्लेस अ 150 फुट बॉम्बर? बिग लॉसेस। तो रशिया को इन लोगों ने क्या करा है, दे फोकस्ड इट दैट साइड, एंड उसको लिंक कर रखा है अभी फ्रांस के साथ। मैं आपको बताऊं अंदर की बात, फ्रांस इज बाइंग मोर रशियन ऑयल टुडे देन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो फ्रांस ने शुरू कर रखा है, लिथुएनिया लैटविया ने रशिया से ग्रेन लेना शुरू कर रखा है, तो वो वहां पर उसको रीएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर थोड़ी बातें हो, थोड़ा ये हो, लेकिन अभी ना हो, इलेक्शन के बाद हो, थोड़ी सी अभी एस्केलेशन करते हैं। सो एस्केलेट टू डीएस्केलेट करने का एक प्लान है इनका, वहां पर उसको पकड़ के रखा है। अगला टारगेट आता है ईरान। अब जब रशिया यूक्रेन में घुसा, रशिया ने देखा यार ये तो भैया मेरे को तो गड्ढा खोद रखा है, हो गया होगा ईरान चाइना के, भाई ये क्या किया मेरे को तो फंसा दिया लोगों ने। नहीं नहीं ठहरो ठहरो, वी गॉट अ प्लान, अमेरिका को जरा खींचते हैं यहां पर। साल लगाया, हमास को ट्रेन करा, आग लगा दी अक्टूबर 7 को इसराइल के अंदर, इसराइल फंस गया उधर पे। अब इसराइल फंसा तो डिफैक्टो अमेरिका आके फंस गया। आप इनिशियल डेज याद करिए सर, 2 से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे वहां पर, पूरा अमेरिकन फोर्सेस वर गेटिंग रीडिप्लॉयड, ये वो पेट्रियट्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो अमेरिका वॉज ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जाके इसके अंदर एंगेज हुआ, बट अमेरिका पीछे रहा। अब उसके बाद दम नहीं है वो अलग चीज है, बट उसकी भी पॉलिसी है कि भैया मैं लड़ना नहीं है, मैंने लड़ाना है लोगों को, तो पीछे हो गया। तो 1-1.5 साल अभी 6-8 महीने से ये चल रहा है सर। और दूसरा क्या है, इसराइल के ऊपर ना प्रेशर बहुत ज्यादा है, नैरेटिव का प्रेशर बड़ा जबरदस्त है, तो उसका काउंटर अटैक तो आना था सर। काउंटर अटैक आया ईरान के अंदर, सबसे पहले अटैक हुआ आईएसकेपी के बंदों ने ठोका जाके कैरमान में, जहां पर कम से कम 150 बंदे मार दिए इन्होंने कासिम सुलेमानी की ग्रेव पे। अब सिंबोलिज्म देखिए सर, ईरान को अगर गुस्सा दिलाना है तो आपने कासिम सुलेमानी को आपने ठोका, उसके बाद आपने जाके अटैक कराया उसकी ग्रेव पे, तो सिंबोलिज्म है। देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर, हम छोड़ेंगे नहीं, उठा के उन्होंने पाकिस्तान को ठोका, वहां पर इराक को ठोका, इधर ठोका, तो इरानियंस वेंट अ लिटिल बॉन्कर्स। ईरान को ये ले आए एकदम एज पे कि भाई अब ये हीट अप हो गया है, अब इसको थोड़ा भी कुछ करो ये रिएक्ट करेगा। उसके बाद जाके भाई पूरा सिनेरियो बनता है, इजराइल जाके एक सो कॉल्ड उसकी एम्बेसी के साथ वाली बिल्डिंग ठोक देता है। अब सर कोई बोलता है अमेरिका को नहीं पता था, आई डोंट बिलीव इट, ये मानना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। एंड इनको ये भी नहीं पता था कि भाई इसराइल की ईरान की तरफ से जवाब आएगा, आप उसकी जाके तुम एम्बेसी तोड़ रहे हो तो जवाब तो आएगा, तो दे न्यू दिस, दे टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड दे वेंट एंड हिट हिम। ईरान ने मैं मारूंगा, पहली अप्रैल को अटैक हुआ, 14 अप्रैल को उसने जाके रिटेलिएट करा। अब ये रिटेलिएशन देखो सर, बड़ा इंटरेस्टिंग रिटेलिएशन है, 350 रॉकेट फायर करी गई और कहते 10 गिरी इसराइल में। सर
10 भी नहीं, 7,
चलो 10 सर, चलो ईरान को भी थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ता है सर, 10 मान जाते हैं, चलेगा 7 बोल रहे हो, बट थोड़ा डैमेज हुआ है जो भी है।
वो तो इतना डैमेज होता है, दिवाली पटाखे चलाते हैं उतना डैमेज
हुआ। हां ठीक है, व्हाटएवर इट इज, सम डैमेज हैज हैपेंड, मान लिया ओके 10 गिरी, चल 12 गिर गई, ईरान को 10% और डिस्काउंट दे दिया, चल भाई खुश रहे। पर सर बाकी जो 330 मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे, वो ऐसी इंटरसेप्ट हो जाती हैं, 5 कंट्रीज की एयरफोर्स टेक ऑफ करती हैं, देयर इंसिडेंटली इन ऑल इन द सेम प्लेस वेयर द ड्रोन्स एंड मिसाइल्स आर कमिंग फ्रॉम। एंड वहां ये कोई छोटी जगह नहीं है सर, फायर हुआ था यमन से, ईरान से, सीरिया से, हर जगह से फायर हुआ था ये। तो ये सारे एवरीबडी वॉज जस्ट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट इक्विपमेंट विद द राइट एयर डिफेंस विद नो ग्लिचेस इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट केम बाय वाज शॉट डाउन। ओ फैंटास्टिक, सुपर्ब भाई, वेस्ट की जो आप कैपेबिलिटी देख लो सर, मतलब थोड़ी हेल। वहां यूक्रेन बोल रहा है भैंस यार, इतने ये इतना
तो नहीं आर्म्स सेल पिच तो नहीं थी कोई,
ठीक है यूक्रेन
बाय द वे इंडिया इधर देखो S-400 हाँ। नहीं देखो हमारा एरो कैसे काम करता है,
ठीक है देखो। तो आप देखो वहां पर यूक्रेन का ज़ेलेंस्की का अगले दिन जवाब आ गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, वहां पर तो जाके तुम लोग सारे उड़ा देते हो, हम यहाँ पर रोते रहते हैं, हमको मिसाइल दे दो हम ही उड़ा देंगे, तुम मिसाइल ही तक नहीं देते हमको, वहां तो खुद लड़े हो, मेरे साथ यहाँ पर कोई नहीं आता। तो यू नो दैट मैसेज ऑल्सो वेंट बाय कि बेटा तू है लट्टू, तेरे को रखा है वहां पर मरने के लिए, तो तू अपना काम कर, यू हैव नो बिजनेस इन द बिग बॉयज टेबल, दिस इज द बिग बॉयज
टेबल, यस एग्जैक्टली बिग बॉयज प्ले।
And incidentally, everybody, everything gets shot down. Saudi Arabia help करता है Israel की। तो ये मैं बोला यार there's something wrong। तो मैं जरा history में गया। जब history में गया तो देखा, और ये चीज मैंने पहले बात करी भी I think आपके show में, कि भाई Saudi Arabia ने US को क्या बोला है कि देखो भाई ऐसा है, तुमको चाहिए Israel वाले paper में मैं sign करूं, ठीक है मैं कर दूंगा। तुमको चाहिए Palestinians को मैं भूल जाऊं, ठीक है मैं भूल जाता हूँ। लेकिन यार मेरे को एक चीज चाहिए, जो तू इसराइल को देता है ना, ये जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला, न्यूक्लियर, ये वो सारा मेरे को दे, गिव मी ऑल दैट, मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है, अगर सऊदी ने इस तरह की हेल्प करी है, दैट इज वेरी क्लियर दैट सऊदी को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला और यूएस सिक्योरिटी गारंटी मिलने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो ईरान ने रिटेलिएट करा एक न्यूक्लियर कंट्री पे, उससे एक और चीज प्रूव होती है कि कहीं ना कहीं ईरान भी अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि साहब ऐसा है, मेरे पास भी हथियार है, मैं भी ऐसे कुछ काम कर सकता हूं, मेरे पास भी जरा न्यूक शूक है। अब चक्कर क्या हुआ, ईरान ने इधर उधर देखा, यार ये तो कोई अरब वर्ल्ड में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ये तो सारे उसकी हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से गालियां और पड़ रही है मेरे को, यार इंडिया भी बोलता है तूने शिप ले लिया, क्या कर रहा है वो एंड ऑल दैट स्टफ, इधर उधर से और गालियां पड़ रही है मेरे को, यार ये तो गड़बड़ होगी। एंड प्लस आई एम एम्बैरेस्ड, मेरा तो मेन फोर्स इज द रॉकेट्स, जितनी रॉकेट फेंकी वो सारी इंटरसेप्ट हो गई, यार ये क्या हुआ। उसने चाइना को फोन किया होगा, शी जिनपिंग क्या रॉकेट दिए भाई तूने, क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है तूने, क्या रॉकेट दिए भाई, जितनी फेंकी सब बंद होगी वो, व्हाट इज दिस? सो ऑल ऑफ देम विल बी लाइक ओके यार दिस इज इंटरेस्टिंग. तो रशिया एक टाइम तक, यू नो, चाइना ने बड़ा हार्ड स्टेटमेंट दिया ईरान के लिए, नो वी स्टैंड विद ईरान. रशिया ने बोले नहीं नहीं वी वॉन्ट पीस इन द मिडल ईस्ट, क्योंकि अमेरिका ने यूएस ने जाके एक और जगह आग लगा दी, अर्मेनिया अजरबैजान. अजरबैजान ने कल फोन करा रशिया को कि भाई ऐसा है कि आपके जो यू नो वो है ना पीस कीपर्स है उनको जरा यहां से हटा लो, आप ले जाओ यहां से, हमको जरूरत नहीं है. अजरबैजान है दोस्त इसराइल का, तो लोग देखना शुरू हो गए. मैंने भी कल जरा एयरफील्ड शेयरफील्ड निकाल के देखे यार, इनके चार एयरफील्ड हैं, बाकू है, गांजा है और तीन चार दो और एयरफील्ड. बाय द वे यस द नेम इज गांजा, आप भी इधर उधर देख रहे हो यार ये गांजा क्या है. गांजा इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन अजरबैजान जहां पर बहुत बड़ा एयरफील्ड है. तो यार इजरायली वहां जाके ईरान को अटैक कर सकते हैं गांजा से, पता नहीं सर मुझे नहीं पता, बट इट्स अ वेरी ओल्ड सिटी बट वहां पर है वो, ठीक है. तो ये वहां पर भी यार, तो इसराइल ईरान ने देखा यार ये तो साला उल्टा पड़ने वाला है, रशियंस ने देखा ये तो उल्टा पड़ने वाला है, आई एम नॉट गेटिंग इनसाइड. उसने अपनी चुपचाप दुकान बंद करी, वो निकल गया वहां से, एंड ही इज नाउ फाइटिंग ओवर देयर. व्हाट ईरान फाइंड्स इटसेल्फ इज, जब वो पीछे की तरफ देखता है पाकिस्तान जुंदल्ला लेके खड़ा हुआ है, आजा मैं मारूं, नॉर्थ की तरफ देखता है अजरबैजान में झगड़ा होने को आया है. एंड बाय द वे अजरबैजान एंड ईरान हेट ईच अदर बिकॉज नॉर्दर्न ईरान में अजेरी लोग रहते हैं, तो बोलता है भाई इधर पे पाकिस्तान, उधर पे अजरबैजान, इधर पे इसराइल, ओ गड़बड़ होगी, वी स्टेप टू फार, तीन फ्रंट खुल गया भाई, बैक ऑफ. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब इसराइल ने ये रिटेलिएशन करा है. ईरान के कई सीनियर ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया कि भाई हमको समझ नहीं आ रहा ये आया कहां से है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हमारा कोई
ये पाकिस्तान से आया है, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये पूरा जो अटैक है इस्फहान पे किया है और जहां भी और भी किया है, अभी तो यही नहीं बता रहे कहां कहां किया है, तो ये सारा का सारा पाकिस्तान से आया है,
सात जगह पे किया है सर, सात जगह पे अटैक आया है इनका, एंड इस्फहान इज द मेन प्लेस.
एयर डिफेंस ने कहीं काम नहीं किया,
चाइनीज है ना, चाइनीज कॉपी SQ-9s उनके पास वो है,
चाइनीज एयर डिफेंस का टेस्ट भी हो गया
सर, चाइनीज एयर डिफेंस तो टेस्ट हो गया था पहली, जब ईरान को पाकिस्तान ने मारा था तभी भी टेस्ट हो गया था, ईरान ने पाकिस्तान को मारा था तभी भी टेस्ट हो गया था, जब हमारी ब्रह्मोस हाथ से निकल गई थी तभी भी टेस्ट हो गया था, बालाकोट में भी टेस्ट हो गया था, कितना टेस्ट करोगे सर, चाइना को छोड़ दो, बेचारा बच्चा है वो, माफ कर दो, मर जाएगा वो.
ऐसा है एयर डिफेंस का एक और भी काम होता है ना, वो तो वो ट्रेजेक्ट्री और डायरेक्शन वायरेक्शन ये सब एनालाइज कर लेती है एयर डिफेंस, तभी तो लॉन्च होती है ना एयर डिफेंस. उनको ये ही नहीं पता चला अभी तक एयर डिफेंस को कि आया किस किस तरफ से, वेस्ट से आया कि ईस्ट से आया.
तो ये रॉयटर्स का इंटरव्यू है, सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ लाइव वोकल रॉयटर्स इंटरव्यू, जो वो बोलते हैं यार वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग वेयर दिस इज कम फ्रॉम एंड वी हैव नो प्लान्स ऑफ रिटेलिएशन. तो मेरे दिमाग में आता है यार ये ना ये बात ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा फिक्स्ड मैच है, फिक्स्ड मैच ऐसा है यार, ठीक है भाई तू ठंडा हो जा, अभी तेरे को हमने फंसा रखा है, पीछे से ज्यादा चूचड़ाएं करेगा, उधर से पाकिस्तान ठोकेगा तेरे को, इधर से अजरबैजान को मैं सीधा करूंगा, प्लीज काम डाउन. ईरान इज रियलाइज्ड ओके आई एम क्रॉसिंग माय लिमिट, लेट मी काम डाउन अ लिटिल बिट. वो कुछ करेगा, ईरान छोड़ेगा नहीं, जैसे इसराइल नहीं छोड़ेगा ईरान भी नहीं छोड़ेगा. बट डायरेक्टली आई डोंट थिंक ईरान विल वॉन्ट टू गेट इन टू दिस बिग फ्रैकस, बिकॉज वो बोलता है ना भाई मेरे तो अंदर भी गड्ढे हैं. बाय द वे एक 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 चैनल है इंस्टाग्राम पे, द एक्स मूवमेंट, एक्स मुस्लिम मूवमेंट ऑफ ईरान, लोग अपने हाथ पे लिखते हैं आई एम एक्स मुस्लिम एंड दे पुट फिट फोटोग्राफ्स ऑफ देयर हैंड्स. तो ईरान में अंदर प्रॉब्लम्स है एंड दे रिकग्नाइज दैट कि यार प्रॉब्लम्स है. लेकिन ईरान को एक एक विक्ट्री भी मिली, ईरान ने बोला देखो मैंने इसराइल को 350 रॉकेट से ठोका है, किसी अरब कंट्री में दम नहीं हुआ कि ऐसा अटैक करे इसराइल को. एक बार सद्दाम हुसैन ने 91 में रॉकेट्स मारी थी इसराइल के ऊपर, वो जब वो थोड़ा बावला हो गया था उसने स्कड स्कूड फेंक दी थी, तो उस टाइम पे इसराइल ने कुछ करा नहीं था बिकॉज दैट वाज अ स्टूपिड अटैक. बट ही सेंट अ मैसेज टू एवरीबडी इन द मिडल ईस्ट कि साहब आई कैन डू दिस राइट एंड आई कैन टेक द ब्रंट ऑल्सो. तो अपना एक पोजिशनिंग बनाने की कोशिश कर रहा है बट दैट पोजिशन इज वीक, क्योंकि जब वो इधर उधर देखता है ही हैज मल्टीपल फ्रंट्स ओपन राइट नाउ एंड ही इज वरीड कि अगर मैं वहां से एक फ्रंट खोलूं, लेट्स से मैं हिजबुल्ला को बोलता हूं भाई अटैक कर, यहां से जुंदल्ला अटैक करेगा मेरे ऊपर, जैश उल अदल, वहां से अगर मैं कुछ बोलता हूं यहां से ये अटैक करेगा मेरे ऊपर. सो देयर आर इश्यूज दैट ईरान इज फेसिंग टुडे एंड उसको ये बेसिकली एक कंटेनमेंट की तरफ डालना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू डील विद ईरान बिकॉज इस टाइम पे इलेक्शन है, दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ बिग थिंग. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज बाय टेलिंग ईरान टू काम डाउन, स्टे ऑन द साइड, तू जरा साइड हो जा, ये अपना जो हमास का ड्रामा है इसको जरा कम कर. एंड ही इज ऑल्सो बीइंग शोन द पिक्चर की देख बेटा उधर पे रशिया अलग बैठा है और इस तरफ चाइना की तरफ जापान और फिलीपींस के साथ हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है और चाइना अभी नर्वस हो रहा है उस तरफ. सो नोट दैट ऑल द थ्री सो कॉल्ड एलाइज आर एंगेज्ड. बट मैं फिर भी हैप्पी नहीं हूं सर, अगर ये गेम प्लान है अमेरिका का और वेस्ट का, आई एम नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज इन लोगों ने पूरी तरह फॉलो थ्रू नहीं करा है उसको. इफ दे वॉन्टेड टू हिट दे शुड हैव गॉन एंड हिट ईरान हार्ड, दे डिडंट डू दैट. ये चुटपुटे चार छह ड्रोन भेज दिए, दो चार मिसाइल भेज दी, ठीक है, फेयर इनफ, यू गॉट योर पॉइंट, बट ईरान स्टिल स्टैंड्स. केओस वैल्यू फिर भी है और जितना ईरान को पकड़ में आएंगे, अभी कल जैनेट येलन ने एक स्टेटमेंट डाला है कि साहब ईरान जो चाइना को तेल बेच रहा है हम जरा उसको रीवैल्यूएट करेंगे. ठीक है, भारत और चाइना के पास थोड़ी सी फ्रीडम है कि आप ईरान के साथ तेल तू ले लो, कोई बात नहीं. पाकिस्तान लेने की कोशिश करता वहां से, अच्छा क्या बोला, तेल लेगा ना, वापस हो जाता वो. बट नाउ दे गोइंग टू स्टार्ट टारगेटिंग दिस, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, 37% ऑफ रशियन ऑयल सेल जो है वो आई है भारत के अंदर. तो चाइना इज नो मोर द सिंगल लार्जेस्ट बायर, चाइना ले रहा है ज्यादा ईरान से. तो अगर ये गेम है देन द चाइनीज आर वरीड कि यार यहां से तो तेल भी जाएगा, मैंने ऊपर रशिया से भी एक दो पंगे ले रखे हैं, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगी. ईच पावर इज बीइंग आइसोलेटेड सर, उसको सेपरेट किया जा रहा है, उसका जो कोऑर्डिनेशन फैक्टर है, जो एक लिंक फैक्टर है, उसको थोड़ा ढीला किया जा रहा है कि बेटा ज्यादा मत सोच, वो तेरे को हेल्प नहीं करेगा. क्योंकि अमेरिकन को एक चीज पता है सर, चाइना को साइड में करो, अगर ईरान और रशिया लेट्स से अमेरिका के साथ झगड़े में घुसता है, चाइना ने एक बंदा नहीं भेजना वहां पर. ये दोनों को ये समझ में आ गया कि ये ना ये
भी बंद कर रहा है बेचारे पाकिस्तान का.
ठीक है, तो ये इनको समझ में आ रहा है
चीन में कुछ हो गया.
हाँ पता नहीं चीनी मारे हैं जापानी मारे हैं, मेरे को नहीं पता सर. अब वो अब देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड रेसिस्ट, पहले हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ. नहीं, अब डॉन ने रिपोर्ट करा है दो जापानियों को इंजर हुई है. मेरे एक सोर्स ने बोला है भाई 5 ओरिएंटल लुकिंग पीपल हैव बीन इंजर्ड एंड 2 आर ग्रीवियसली इंजर्ड. ये मेरी अभी तक इंटेलिजेंस टू मेरी रिपोर्ट है कि साहब 2 सीरियस हैं और 5 टोटल चिपका है. तो आप ये देख लो सर, ये बेसिकली एक रोल बैक की गेम है जो ये इतना सा फैला हुआ था ना यहां पर. जब अमेरिका ये अफगानिस्तान में से अपनी दुम दबा के भागा यहां से, तो यहां पर सब शेर बन गए. अब शेर बने ठीक है यार, अमेरिका सऊदी के पीछे पड़ा था, भाई इसराइल से तू बात कर. सऊदी को ये पता है यार इसराइल ईरान के ना चक्कर नहीं है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं बीच में फंस जाऊंगा आके. कल को इफ समथिंग हैपेंस बिटवीन इसराइल एंड ईरान, आई विल गेट स्टक इन द मिडल. अगर मेरे ईरान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो जब चाइना आया इसके पास बोलने के लिए कि भाई मैं तुम्हारी दोस्ती करा देता हूं, तो बोला डैम गुड यार करा दे. तो कल को अगर ईरान और इसराइल को कुछ झगड़ा होगा तो मैं बोलूंगा मैं इन्वॉल्व नहीं हूं भाई, आई एम नॉट स्टैंडिंग बाय इसराइल, क्योंकि अभी तक सऊदी ने इसराइल के साथ कुछ डील नहीं करी है. सो दे यूज चाइना टू गेट दैट लोकल नैरेटिव गोइंग. उसके बाद चाइना को तो टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंक दिया सर वहां से. अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है अभी सऊदी अरेबिया, तो कहां गया चाइना इस टाइम पे? ईरान
तो भी मांग रहा है, इंडिया से ले लेना.
सर आज वैसी ब्रह्मोस जा चुकी है फिलीपींस के अंदर, लॉन्चर्स तो पिछले 2 महीने से वहां पर बैठे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट आज मिसेस गई हैं. तो आज चाइना चाइनीज सोशल मीडिया वैसी बावली हो रखी है कि भाई ये क्या हो गया. वो मैप बना रहे हैं, पता है ये रेंज है उसकी. रेगुलर ब्रह्मोस हाँ जी
रेगुलर मेंबर्स तो पहले पुरानी वाली तो 290 थी।
हाँ तो अभी इनको कुछ भेजी आई थिंक 550 की रेंज की भेजी है, तो वो ये रेंज है, इसमें इतना पंगे होने वाले हैं हमको। दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट।
पूरा साउथ चाइना सी तो कवर हो गया?
पूरा तो नहीं सर, एटलीस्ट जो इसकी क्लेम लाइंस है तो वो काफी हद तक कवर हो जाती हैं। एंड ताइवान से पहले एक आइलैंड है ऑन द साउथ ई साउथ वेस्ट ऑफ ताइवान, एक आइलैंड है बताने करके सर। बताने इज अ बिग बैक बेस टू ताइवान की। अगर ताइवान पे कुछ अटैक आता है, चाइना फिलीपींस सॉरी अमेरिका फिलीपींस और जापान ने एक अग्रीमेंट करा है कि ये एक आइलैंड और एक यूचीशी आइलैंड है विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ ताइवान सेम पोजिशन में, तो ये दो आइलैंड रहेंगे बैक बेस, यहां से हम लोग गेम खेलेंगे इसका। एंड इंटरऑपरेबिलिटी अप्रूव हो रखी है, तो भैया $100 बिलियन के आर्म्स बनेंगे और ये बोलते हैं भाई इंटरऑपरेबिलिटी। ऊपर से एक जो चीज जापानीज ने करी है जिसमें चाइनीज का तेल निकला है कि भाई एक इनका पुराना हेलीकॉप्टर कैरियर था, कहते हैं भाई हेलीकॉप्टर नहीं अब इसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे कागा। अब कागा आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाओ, सो कागा वाज द शिप दैट यूज्ड टू हिट प्रीटी चाइना। वो साइकोलॉजिकल गेम चल रही है वहां पर, दे आर ट्राइंग टू यू नो पुट चाइना इन इट्स प्लेस इन दैट एरिया
आल्सो। हैज सक्सेसफुली, ये देखिए चाइना की सक्सेस, देखिए चाइना है सक्सेसफुली इनवाइटेड अ फोर फ्रंट सिचुएशन।
सर वी हैव नेवर स्पोकन अबाउट मंगोलिया, ट्रस्ट यू मी,
दोस गाइस हेट चाइना। ईस्ट कोस्ट पे और एक इंडिया तो है ही,
तो इंडिया से चाहते क्या है पता है अमेरिका, इंडिया से यही चाहते हैं कि साहब आप जरा अभी रिजॉल्व मत करना, ठीक है आप पीछे मत हटना, रिजॉल्व मत करना और ना उसको पीछे हटने दो, बस खड़े रहो। आप बोलते हो यार वैसे भी कौन सा रिजॉल्व हो रहा है, ये तो 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर मेरे को रिजॉल्व करना है, ये तो कल सुबह थोड़ी हो रहा है, ठीक है वो खड़े हम भी खड़े,
ठीक है आपको
ठीक है। आप डीप स्टेट से गेम खेलते रहो गंदी गंदी आर्टिकल,
आप ओबलाइज रहो, यू रिमेन ओबलाइज्ड और जैसा हम कहें वैसा करते रहो, प्ले आवर गेम बेसिकली।
सर वो तो चल रहा है ना, डीप स्टेट से आर्टिकल्स आ रहे हैं गंदे गंदे आपके ऊपर, चैटम हाउस से आर्टिकल आता है 11 तारीख को, एक बंदा लिखता है कि भाई इंडियाज जियोपॉलिटिकल हेफ्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इनका नाम है जिब्रिश वाजपेयी, ठीक है जिब्रिश रोड, हाँ जिबिश वाजपेयी और समथिंग लाइक दैट, शिप्रिश ऐसी कुछ था इनका नाम है, नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग, हाँ वाजपेयी वाज द लास्ट नेम। कहते हैं भाई 11 तारीख को कहते हैं, कहां पर लिखा है चैटम हाउस में आर्टिकल आता है कि भाई भारत का जो जियोपॉलिटिकल लेफ्ट है ना, ये जो डेमोक्रेसी शेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है ना, उसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा जी,
करना पड़ेगा, मोदी जी को फ्री पास देना पड़ेगा,
ठीक है। उसके बाद यही आदमी 4 दिन के बाद उसके पिछवाड़े में कोई सुई घुसाता है और ठीक है वो एक आर्टिकल लिखता है 15 तारीख को, नहीं 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 नहीं, ये जो पॉलिटिकल डाउनफॉल है ना डेमोक्रेसी का, इससे ना वेस्टर्न देश थोड़े गुस्सा हो जाएंगे और हमको ना शायद अपनी अलाइनमेंट चेंज करनी पड़े। 4 दिन के अंदर क्या चेंज हो गया, क्या चेंज हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया हमारे मफलर मैन के लिए कि बेटा जरा अंदर ही रहो आप, बाहर नहीं आना यहाँ से, यार क्या कर रहे हो यार, आपने हमारे बंदे को पकड़ के रखा हुआ है, नहीं नहीं ये ठीक बात नहीं, आपकी डेमोक्रेसी खराब है। ये तो वो है सर, वो छोटा बच्चा होता है ना जिसके वो मुंह में अंगूठा निकाल के बैठा होता है, उसके मुंह से अंगूठा निकाल दो सडनली रोना शुरू हो जाता है, इनकी वो हालत है। दे आर सो डेस्परेट, फेंको कुछ भी फेंको, कुछ तो चिपके भाई। यूके के पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर की डिस्कशन हो रही है कि भाई ये तो चर्चेस जले थे वहां पर, ये चर्च क्यों जले थे हमको समझ नहीं आया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है सर। हाँ ठीक है आप गेम खेलते रहो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक और अपडेट आया है कि साहब आपके लाइजन ऑफिसर्स जा रहे हैं। तो यूएस की जो थिएटर कमांड्स हैं स्पेशली विद इन द रीजन एंड एक्चुअली द वर्ल्ड ओवर, आपका एक कर्नल लेवल ऑफिसर विल नाउ बी डिप्लॉयड देयर परमानेंटली एज अ लाइजन ऑफिसर। तो लेफ्टी डीप स्टेट बोलता है तुम खराब हो, राइटी बोलते है पागल हो गए हो क्या, ओए साहब साइन करो एग्रीमेंट एग्रीमेंट एग्रीमेंट, आपको क्या चाहिए बोलो बोलो बोलो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड।
भाई मुझे तो इस टाइम बड़ा मजा आ रहा है, सही बताऊं आपको,
अमेजिंग सास बहू की कहानी है सर ये तो।
देखिए साहब 70 साल हमने ये सुना साहब देखिए, हम तो क्या है, हम तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट टाइप के लोग हैं, बड़े पुअर हैं और हमारे सब कुछ ख़राब है, हमारी ज्योग्राफी भी ख़राब है, हमारी हिस्ट्री भी ख़राब है, हमारा रिलीजन भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। सडनली वी रियलाइजिंग लास्ट 10 ईयर्स कि यार जो कुछ है वो तो हमारे पास ही है। और वो बेचारा पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक अपनी पोजिशनिंग की बात किया करता था वो इररेलेवेंट हो गया। जो कुछ है सब हमारे पास है, चाइना का बॉर्डर भी हमारे पास जो एक लायबिलिटी हुआ करता था वो एसेट हो गया।
सर इट्स अबाउट हाउ यू यूज योर गेम।
चाइना का बॉर्डर जिसको लेके हम परेशान रहते थे, इट वाज अ ह्यूज लायबिलिटी, ह्यूज प्रॉब्लम, ह्यूज सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सडनली इट हैज बिकम अ जियोपॉलिटिकल एसेट।
या आई एम वेरी थैंकफुल।
बाकी जो है हमारी जो पोजीशनिंग है अंडमान्स में, लक्षद्वीप में, अरेबियन सी में, जो पूरा हमारा पेनिनसुला है, वो तो यू कांट टेक इट अवे। इंडो पैसिफिक इज बिकम सो इम्पोर्टेंट, सो इंडिया इज नाउ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। हमें तुरंत जो है ब्रिटेन से डिमांड करना चाहिए कि भैया तुम जो है वो ग्रीनिश मीन टाइम हटाओ, नाउ द वर्ल्ड विल फॉलो उज्जैन मीन टाइम।
उज्जैन कहां से आ गया बीच में?
अरे आपको पता नहीं, उज्जैन यूज टू बी दी सेंटर ऑफ ऑल आवर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, दैट यूज टू बी दी सेंटर। वो जो लॉन्जिट्यूडिनल सेंटर दुनिया का था वो उज्जैन ही माना जाता था।
जी जी जी,
एम्पायर बन गई इनकी, तो उसको वो ग्रीनिच ले गए,
उसको उठा के अलाहाबाद शिफ्ट किया।
तो आप शिफ्ट करो, उज्जैन शिफ्ट करो भाई, नाउ इट विल बी उज्जैन मीन टाइम।
सर ये चीज आपको याद होगा,
उज्जैन इज ऑन द सेंटर ऑफ ट्रॉपिक्स आल्सो, वही उसकी लोकेशन है। तो इसलिए आप उज्जैन मीन टाइम, नाउ दैट्स द नेक्स्ट स्टेप, इंटरनेशनल योगा डे के साथ साथ उज्जैन मीन टाइम योगी जी को, हमारे मोदी जी को तुरंत जैसे ही ओथ ले वैसे डिमांड करना चाहिए भाई नाउ इट इज UMT।
सर मोदी जी छोड़ो, आप और हम डेफटॉक्स एंड जयपुर डायलॉग हम लोग कॉम्बिनेशन करके हम निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है?
UMT, आज से हम UMT करेंगे,
ठीक है? ये वाला जो टाइम है ये उज्जैन मीन टाइम है, आधा घंटा आगे करो वो प्रयागराज मीन टाइम हो गया, आधा घंटा आगे करो वो कोलकाता मीन टाइम हो गया, आधा घंटा आगे करो वो अरुणाचल में मीन टाइम हो गया, वो खत्म कहानी।
हमें लोकल मीन टाइम की बात नहीं करनी है, इंटरनेशनल मीन टाइम है उज्जैन मीन टाइम।
करेक्ट करेक्ट, बट ये चीज आप
USA इज 9.5 माइनस 9.3 उनका जो ईस्टर्न टाइम है, माइनस 9.3 UMT।
उज्जैन मीन टाइम,
मीन टाइम,
करेक्ट सर। ये चीज आपने और हमने बात करी थी,
माइनस 4.5 जो है वो आपका ब्रिटिश समर टाइम आ गया,
करेक्ट।
UMT माइनस 4.5 UMT,
एब्सोल्युटली
उज्जैन मीन टाइम, बिल्कुल।
हमने ये बात करी थी सर, वी हैड सेड दिस, यू नो, जब आपके साथ बात करी थी अबाउट, आपके साथ जब पॉडकास्ट किया था, इन पर्सन पॉडकास्ट जो हमने आई थिंक जनवरी में किया था, दिसंबर जनवरी में जब मैं आया था आपके पास, हमने एक चीज, नहीं उससे पहले वाला सर, जो डीप स्टेट वाला बात किया था ना, उसमें आप बड़े क्लियरली मेरी चीज देख लीजिए, मैंने आई थिंक नवम्बर दिसंबर में आया था मैं आपके पास बिफोर न्यू ईयर, मैंने एक चीज बोली थी बड़ी क्लियरली सर, कि साहब जो फोकस है दुनिया का वो इंडियन ओशन की तरफ आएगा, इट हैज टू कम टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, देयर इज नो अदर वे। क्योंकि देखिए ये एक सर्कल था सर, ये स्टार्ट हुआ था इंडियन ओशन से, ये उसके बाद मूव हुआ, ये आर्कटिक ओशन, सॉरी ये अटलांटिक ओशन की तरफ गया, जब यूरोसेंट्रिक एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड ऑर्डर था 16th, 17th, 18th, 19th सेंचुरी में, उसके बाद ये 20th सेंचुरी के अंदर जब वर्ल्ड वॉर हुई, दिस थिंग शिफ्टेड एंड इट वेंट इनटू द पैसिफिक, क्योंकि अमेरिका का बैकयार्ड था, ये था अमेरिका यूज्ड टू डोमिनेट द अटलांटिक, तो वहां इतना इशू नहीं था, रशिया वाज का एक ही जगह थी जहां पर ये बाहर आ सकता था, जापान का इनका थ्रेट था, दे हेल्ड अप जापान जबरदस्त तरह से, ग्रोइंग चाइना, सो द फोकस शिफ्टेड टू द पैसिफिक, एंड अभी इस टाइम पे इफ यू लुक एट इट, देयर इज अ रीजन व्हाई एवरी कंट्री हैज एन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, because the damn thing has come back to the Indian Ocean. Australia ki strategy aap dekh lijiye sir, padhiye wahan par likha hua hai usne, India is the baseline for the Australian security strategy in the Indo-Pacific, baseline, बेसलाइन मतलब भाई यही है, इसके ऊपर काम करना है हमको। तो ये गेम तो सर, ये तो आपके बैकयार्ड में हो रही है। इवन दिस ईरान इजराइल, यू लुक एट, आप लेट मी टेल यू दिस, जयशंकर जी का सर आप देखिए गेम क्या खेली उन्होंने। ही स्पोक टू बोथ ऑफ दोस गाइज इन 15 मिनट्स। तीन मेजर चीजें आप ऑब्जर्व करिए उसके अंदर। पहले जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, मोदी साहब से बड़ा क्लियर ट्वीट था, वी डोंट स्टैंड विद टेररिज्म, गेट लॉस्ट। अगले दिन बोला कि भाई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एंड ऑल दैट, बट द फर्स्ट रिएक्शन वाज नो टेररिज्म। जयशंकर जी के मुंह से निकला हुआ है ये चीज, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म। बट इस टाइम पे जब ये झगड़ा हुआ, आपने बोला भाई वी वुड आस्क बोथ द साइड्स टू बैक ऑफ एंड डीएस्केलेट। इसका मतलब क्या, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एक्टर एंड अ नॉन स्टेट एक्टर, आप खुले में बोलने को तैयार हो, वी डोंट काउंट दैट, दिस इज द रियलिटी, जो आज तक आपने नहीं बोला था सर 70 साल में। सेकेंड थिंग, यू डिड नॉट टेक ऑयल इन टू कंसिडरेशन, कि कल को मेरा तेल बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा, ओ हो लेट मी टेक अ वेरी सॉफ्ट स्टैंड, मैं पैलेस्टीन के साथ खड़ा हो जा, यू डिडंट डू दैट। तीसरा, डोमेस्टिक वोट बैंक के ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, यू वॉन्टेड टू स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, यू स्टूड अगेंस्ट टेररिज्म, एंड टूडे यू वॉन्ट टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच सो दैट बोथ द कंट्रीज आर टॉकिंग टू यू, यू आर डूइंग दैट। ये फॉरेन पॉलिसी का जो चेंज है ना सर, ये 70 साल के बाद हमको दिख रहा है कि मिडल ईस्ट में देर इज एन इशू एंड देर इज बीन अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, कि साहब बिना ये सोचे कि भाई ओहो मेरा तो मुस्लिम वोट बैंक चले जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। एंड इंसिडेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन सीजन। आप मुझे बता दीजिए सर, आपका स्टैंड इसराइल के साथ है, कितने कितने जो सो कॉल्ड प्रो AIMIM एंड ये वो कितनी चीजें बोल चुके हैं ये लोग इसके बारे में, बिकॉज दे नो इट डज नॉट वर्क, कोई नहीं सुनने वाला, बिकॉज इनकी फॉरेन पॉलिसी इज स्टिच एंड प्रो भारत, ये नहीं सुनने वाले वोट बैंक के ऊपर, एंड द वोट बैंक डजंट गेट इंपैक्टेड। जो एक डर था हमारे अंदर कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, दैट इज द रीजन वाई सर लोग बोलते हैं भाई। उस दिन मैं किसी के साथ इंटरव्यू में था, एक पुराने एम्बेसडर थे न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, कहते जी हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है, दिस बीइंग इन द मार्जिंस डज नॉट मेक एनी सेंस। तो मैंने बोला मैं एम्बेसडर साहब विद रिस्पेक्ट, being on the margin gives you an opportunity to talk to both of them, and that's exactly what you're doing. चार दिन के बाद आप दोनों से बात करके दोनों को ठंडा कर रहे हो। वहां पर कुलेबा जो यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर है और रशिया का प्रेसिडेंट, दोनों बोल रहे हैं साहब इधर आ जाओ, अपना इलेक्शन खत्म करो, पहला चीज इधर आओ यार, बात करो हमारे साथ, इसको खत्म करें यहाँ पर, कोई और बात करने को राजी नहीं है। That's what the margin gives you, an ability to talk to both the sides. चाइना के पास वो एबिलिटी नहीं है आज। चाइना इनवॉय भेज-भेज के परेशान हो जाता है, कोई बात ही नहीं करता उससे।
आप देख रहे हो कि आजकल हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर क्या बात कर रहे हैं, वो 24 घंटे इंडिया के गुण गाते रहते हैं कि ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो इंडिया क्या कर रहा है, ये देखो। मुझे तो लगता है कल को कहीं वो ये ना कह दें कि कल भाई की ये दुबई में जो बारिश हुई वो भी इंडिया ने कराई।
नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ठहरो, अरे क्या याद कराया साहब, ठहर जाओ, मैं आपको एक भेजता हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ जहां पर ये देखो, मैं आपको व्हाट्सएप करूँ, ये प्लीज चला दो यहाँ पर, ये मजा आ जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, ये प्लीज चला दो, मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज, यू विल इंजॉय दिस, इंजॉय मतलब आपके ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं ना, सब हंस हंस के रोल पोल पागल हो जाएंगे अगले 15 मिनट तक। ये जरा आप चला दो बस एक वीडियो, मैंने आपको लिंक भेजा है ट्विटर का, प्लीज पुट दिस अक्रॉस, आपको समझ में आएगा पाकिस्तानी माइंडसेट क्या है। जो आप चीज बोल रहे हो ना, मैं आपको असली माइंडसेट दिखाता हूँ। मैं तो सर ये सुन के इतना हंसा ऑफिस में बैठा था।
ये तो कोई स्नोफॉल वगैरह हो रहा है ये।
नहीं नहीं, आप देखो ना सर, आप उसको चलाओ ना सर, लाइव देखते हैं ना, मेरे को भी आपका एक्सप्रेशन रिएक्शन देखने बज रहा।
Our newly built Hindu temple is the reason for Dubai rainstorm. Okay,
ठीक है, ये पूरा वीडियो है सर, देखो इसके अंदर आपको समझ में आएगा माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। यू विल रियलाइज द माइंडसेट, ये है पाकिस्तानी माइंडसेट। वहां पर सऊदी अरेबिया में किसी ने कुछ नहीं बोला, सऊदी अरेबिया का चीफ इमाम आके अक्षरधाम टेंपल में आरती करता है, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जब पाकिस्तानी ने बोल दिया तो फिर देख लो आप, आई मम्मी मैं ऑफिस में बैठा था, दिस थिंग केम आउट सो लाउडली, मैं एक्चुअली उठ के बाहर जाके हंसा बड़ी जोर से, मैं बोला यार ये तो हंसने वाली बात है, लेट मी गो लाफ प्रॉपरली, नहीं तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगा यार, मजा नहीं आएगा कि मैं हल्के से हंसा, इट इज नॉट फेयर ऑन बंदे ने इतना इतना मेहनत करके वीडियो बनाया तो मैं कैसे ऐसे इसको छोड़ दूं कि यार हल्के से हंस के छोड़ दिया मैंने, ना 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 ना, ना। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ सर, मोदी साहब और भारत ना बड़े खराब लोग हैं, वी बिकम वेरी बैड, हम लोग किसी की बात नहीं सुनते, हर जगह मंदिर बना देते हैं अपने हम लोग, उसके बाद देखो अभी इलेक्शन में क्या क्या चल रहा है सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बेचारे को उठा लिया, कल रात को भी एक और को उठा लिया, ईडी पर्सनल वेपन की तरह यूज हो रही है मोदी साहब, ये मैं नहीं बोल रहा, ये काफी लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए सर कि देखिए अभी भारत बड़ा गंदा देश है सर, एक्चुअली बड़ा वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, ये ऐसे काम नहीं होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल काम नहीं होने चाहिए, दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड मोदी मोदी मस्ट रिजाइन,
मोदी मोदी मोदी
मोदी मस्ट रिजाइन,
मोदी मस्ट मोदी मस्ट
उनको रिजाइन करना चाहिए कि यार ठीक नहीं है, हाँ वो अभी वो क्या 7-8 तारीख को जब वोट टेकेंगे उससे पहले रिजाइन करेंगे ना, हाँ तब बोलेंगे मोदी इज रिजाइंड, मोदी इज रिजाइन टू,
ये देखिए ये आपका चल रहा है,
माफ करिएगा मैं बहुत जोर से हंसूंगा इसमें,
और हुई तेज बारिश जिस जगह अल्लाह पाक ने कई पैगंबरों को भेजकर बुतों की पूजा रुकवाई थी और आज वहीं चंद पैसों की खातिर बुतों की पूजा शुरू करवाई जा रही है। दरअसल दुबई में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दुबई में एक बड़ा मंदिर बनाया गया है जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया, जिस दुबई में सालों तक बारिश नहीं, दुबई में मंदिर खुलते ही
आप समझ में आया, मैं भी सोच रहा था यार ये क्या हुआ दुबई में 5-7 साल पहले एक बार वहां, वैसे आपका अमीरात में जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है ना वो है रसल खैमा,
रसल
वहां रसल रसल खैमा में कोई पहाड़ी पर वो बर्फ पड़ गई थी, तभी उस वक्त भी कहा था कि कयामत कयामत आने वाली है, तो ये तो आई गई कयामत,
ओले पड़े थे, ओले पड़े थे, वो बड़े वाले ओले होते हैं ना वो पड़े बर्फ पड़ गई बहस के, ये तो हालत है इन लोगों की,
ये जो जो है ये इनकी तो हो गई अब कयामत पूरी, तो अब इनको वापस आ जाना चाहिए जहाँ थे वहां पे,
पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान की हालत ये छोड़ दो, पाकिस्तान का फर्स्ट कोर के लेफ्टिनेंट जनरल का
आपको पता नहीं है आज कराची में भी बारिश हुई है,
अच्छा फिर तो भाई भारत कुछ कर रहा है सर, मोदी मस्ट रिजाइन, बट मैं आपको बताऊं पाकिस्तान अब क्या बाहर क्या देखेगा सर, उसके साले अपने कोर कमांडर को संभाल नहीं पा रहा, वो एक को कोर्ट मार्शल कर रहा है, वो कैन यू इमेजिन वन कोर एंड वन कोर कमांडर को आप कोर्ट मार्शल कर रहे हो, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग,
फैज हमीद तो पहले चला जा चुका है, अब कौन बचा,
फैज हमीद नहीं सर, उसका नाम बताता हूँ एक सेकंड में आपको, वन कोर का कमांडर है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज उसकी जो अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है, replacements have already happened, ठीक है, replacement है मेजर जनरल उमर बुखारी जो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ है, एंड जिस बंदे को निकाला है इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट जनरल आयमान बिलाल सफदर, ठीक है, जीओसी वन कोर,
वन कोर का क्या एरिया है
यार वो म से होता है मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इट इज मंगला
मुल्तान,
मंगला मंगला,
ओ यस मंगला मंगला,
वेरी इंपॉर्टेंट एरिया,
ये आपका ये पुंछ से लगता हुआ एरिया है,
जी हाँ सर, तो जितने भी ये टेरिस्ट वाले गेम होते हैं ना वो ये सब वहीं से होते हैं, तो आप वहां का कोर कमांडर निकाल रहे हो, आप
क्यों निकाल रहे हैं, फेल हो गया
सर, बिकॉज नहीं जम रही ना सर, नहीं जम रही, आसिम मुनी नहीं पकड़ पा रहा, डाइपर के बिजनेस के पैसे उसको अपनी जेब में डालने, कोर कमांडर बोलते हैं भाई ऐसा है डायपर का तू रख ले, जो अमेरिका से जो $5 बिलियन आए ना अभी ईरान में उंगली करने के लिए वो तो शेयर कर दे, वो भी शेयर करने को तैयार नहीं है वो,
ये तो
अमेरिका
तो किसी दिन टेररिस्ट अटैक हो जाएगा जीएचक्यू पे, फिर तो
पता नहीं सर कितना टाइम खींचोगे इसको, ऐसे आप
अननोन मैन हैव अटैक्ड जीएचक्यू, आप कितना आ गया और... ये सारे अननोन मैन जो हैं ये लगता है अलग अलग कोर कमांडर्स नहीं पाल रखे हैं,
कभी आपने आसिम मुनीर की आवाज सुनी है सर,
थोड़ा सा जनानी सी है।
मैं आपको एक भेजूंगा, उसमें उसकी आवाज सुनना, ठीक है? और कर क्या रहा है वो? वो जाके नहीं बोलता देश के लिए लड़ो, वो जाके बोलता अल्लाह ने कहा था इस कुरान के इस उसके अंदर। तो ये अपने सोल्जर्स को पेट्रियोटिज्म नहीं की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये बोल रहा है भाई पेट्रियोटिज्म तो गया, इमरान खान खा गया पूरा पेट्रियोटिज्म, मेरे पास एक ही इज्म बचा है वो है भैया किताब, किताब बोल के सबको पकड़ो।
आपने पढ़ी नहीं, मैंने आपको रिकमेंड की थी ना दे कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर,
ठीक है? सो ही इज नाउ डूइंग दैट, उसकी ये हालत हो रखी है। और जियाउल हक के बाद, एंड इट्स नॉट मी सेइंग सर, पाकिस्तानी एनालिस्ट खुद बोलते हैं कि जियाउल हक के बाद
वॉर है जुल्म से लड़ना, और जुल्म क्या है पता है आपको? क्या है जुल्म?
बीइंग अ काफिर।
यस, अल काफिर हु, अल काफिर हु, अल काफिरून हु अल जालिमून, अल काफिरून हु अल जालिमून, अल बकरा।
देखो सर ऐसा है, वो सब ठीक है अल्लाह पाक के लिए, और यू नो मे गॉड रेस्ट सोल इन पीस, कितने लोग मरेंगे सर, कितने मारोगे? हाउ मेनी सर? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम समबडी इज गोना से भैया बस हम नहीं करेंगे। और
जब तक सब नहीं मरेंगे तब तक जन्नत कैसे जाएंगे हमारे आसिम मुनीर साहब?
तो फिर सर अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताइए स्वात की बाउंड्री के बाहर क्यों खड़े हैं ये लोग, अंदर जाने की क्यों नहीं हिम्मत करते? जो 2009 में बाउंड्री थे ना, वो जरबे अजम ऑपरेशन के बाद जो अंदर घुसे थे ये लोग, ये वही बाउंड्री पे आगे खड़े हो गए आज। बलोच जब इनको मारता है बोलता है ओए पंजाबी इधर देख मैं मारने वाला हूं तेरे को, और गोलियां मारता है उसको। फिर वीडियोस है सर, मैं अपने आप नहीं बोल रहा, दीज आर ऑनलाइन वीडियोस दैट आई सी, व्हाई आर दे ऑन दैट लाइन? अगर इतने ये पाक हैं, इतने ही साफ सुथरे हैं, इतने ही इनका ऊपर वाला इनके साथ है, तो साहब लड़ो ना जाके।
वो तो पूरे के पूरे चला गया, चित्राल भी चला गया, स्वात भी चला गया, आपका पूरा कुर्रम एजेंसी भी चला गया, आधा बलूचिस्तान चला गया, बचा क्या इनके पास?
अभी तो रशिया आया नहीं इस तरफ, रशिया ऑलरेडी बात कर रहा है इनके साथ।
मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैट 30% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी हैज बीन लॉस्ट।
30? आई टेक इट अप टू 60 सर, देयर आर पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान सर, 44% तो बलूचिस्तान ही है सर, बलूचिस्तान में क्या रेट बची है तुम्हारी? 40 चलो, एंड बलूचिस्तान में मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं, बलोचों और पश्तूनों में एक डील हो गई है कि भाई क्वेटा पश्तूनों का है, बलोच नहीं छुएंगे उसको, ये अभी तक नहीं थी, रिसेंटली डील हुई है कि साहब नॉट टू वरी दिस इज अ पश्तून टाउन, वी विल नॉट गेट इनटू इट।
वैसे तो अगर देखा जाए, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो क्वेटा जो था दैट वाज अंडर द कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान, और इनकी जो प्रोविंस थी वो कलात थी,
ठीक है? तो ये तो सर दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ अ गेम विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये आके अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जाके, हम ईरान को ठोक देंगे, हम इसको ठोक देंगे, उसको ठोक देंगे, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगा इनकी तरफ, दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट, बिकॉज ईरान इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर कि वो चुप बैठेगा। ईरान ने बलोचों को बुलाना है, बेटा इधर आओ, हाँ जी तो एक काम करो, तुमको बलोचिस्तान ठीक है ना, ठीक है मैं ये देता हूँ, सिस्तान छोड़ दो, यहाँ से सिस्तान ग्वादर एरिया छोड़ दो, सॉरी चाबहार एरिया छोड़ दो, तुम वो करते रहो उधर पे जो करना है। बलोचों ने मान जाना, चलो ठीक है इसके साथ बाद में देखेंगे, अभी अभी मान जाते हैं। दे विल टेक व्हाट इट नीड्स, ये पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर देंगे सर। वहां पर मारंग बलोच ऑलरेडी ग्रेटा थनबर्ग से अच्छी दोस्ती है, तो आप सोच ही सकते हो कहां कहां तक कनेक्शन होंगे उसके, ट्वीटिंग ट्वीटिंग फ्रेंड्स हैं वो, एंड पाकिस्तानीज डोंट रियलाइज इनको अंदर से। एंड बाय द वे क्लियर रिपोर्ट, देयर आर टू ड्रोन बेसिस दैट अमेरिकन्स हैव ऑलरेडी सेट अप इन बलूचिस्तान, ऑलरेडी रेडी
फ्लाइंग विद द परमिशन ऑफ बीएलए और विद द परमिशन ऑफ पाकिस्तान,
विद द परमिशन ऑफ आईसिस।
ओके
ठीक है, नॉर्थ ऑफ क्वेटा आईएसकेपी का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, एंड वहां पर बाय द वे द गाय हुज एक्चुअली लीडिंग दिस इंटायर थिंग इज अ चैप कॉल्ड, मैं आपको बताता हूं नाम इसका, हाँ इसका नाम है सनाउल्ला गफारी, ठीक है? ये एक आल्सो नोन एज शहाब अल मुजाहिर, ये ISISK का करंट लीडर है, और ये पिछले जमाने में क्या था पता है, अमरुल्ला साले का बॉडीगार्ड।
ओके,
फोन नंबर चाहिए तो दे देता हूं,
क्या करूंगा मैं,
पता नहीं, बात कर लो। ठीक है, एंड ये भाई को पता है कहां रखा है, फैमिली के साथ पेशावर एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस।
यस यस, गुड प्लेस टू बी इन।
ठीक है, रनवे के पास में एक कॉटेज है, वहां पर रहता है आराम से बच्चों के साथ, फैमिली बच्चों के साथ। तो ये तो ये कर रहे हैं सर, इनको पता नहीं है व्हाट आर दे प्लेइंग विथ, एंड आई एम सो हैप्पी सर। मैं तो कब से बोल रहा हूं भाई, पॉपकॉर्न खरीद के रख लो, माइक्रोवेव बस बोलते ना, बस डब्बे में डालने की बात है और माइक्रोवेव बंद करके बटन दबाने की बात है, दैट्स इट, बिकॉज दिस प्लेस इज गोना ब्लडी एक्सप्लोड, एंड ऑल वी शुड डू इज सिट बैक, ईट पॉपकॉर्न एंड क्रिएट अ लाइन 100 meters फ्रॉम आवर बॉर्डर की, साहब इसको मत क्रॉस करियो, बहुत जूते पड़ेंगे। मेरे को लगता नहीं इस तरफ आएंगे सर, पाकिस्तानियों का ओरिएंटेशन इस तरफ नहीं है, उस तरफ है, ये भागते भी उस तरफ है।
so तो हम जो है वो दो ब्रॉड कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई इंडिया जो है वो इस पूरे के पूरे जो वर्ल्ड में स्ट्राइफ हो रहा है वो जो है वो इंडिया को और भी पावरफुल बना रहा है एक, और हमारे पाकिस्तान ने अपनी 30-40% आप 60 कह रहे हो, 60 नहीं मानता, अपने 30-40 पे रह जाते हैं, 30-40% ऑफ टेरिटरी दे हैव लॉस्ट ऑलरेडी।
चलो आप 30-40 बोल रहे हो, मैं 60 बोल रहा हूँ, 50 में मान रहे हैं,
नहीं नहीं 30 और 60 का मिड पॉइंट 60 नहीं होता,
चलो मिड पॉइंट 45 में मान जाते हैं।
चलो ठीक
है, नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, भारत की पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग बाहर निकलेगी, एंड आई थिंक अगर ये इलेक्शंस नहीं होते ना सर इस टाइम पे, यू वुड हैव सीन अ लॉट मोर जियोपॉलिटिक्स हैपनिंग, लॉट मोर विजिट्स एंड लॉट मोर मूवमेंट्स हैपनिंग। आई थिंक काफी लोग इस रीजन के अंदर वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो मोदी जी, जल्दी करो यार, जस्ट फटाफट करो, दे वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आप ये देखिए सर IMEC के ऊपर, ठीक है, इस टाइम पे ईरान विल बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग मेकिंग श्योर दैट द IMEC वर्क्स, क्योंकि ईरान को नहीं चाहिए उसके नॉर्थ में चाइना का IMEC, वो जो चाइना का BRI है, क्योंकि क्या है जो चाइना का टॉप नोड जाता है ना, आई विल टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन दिस, जो टॉप नोड जाता है वो जाता है यूक्रेन बेलारूस के थ्रू यूरोप में, दोनों से नहीं जा सकता। साउथ वाला जो नोड है वो जाता है, एक नोड जाता है कैस्पियन सी के थ्रू बाकू अज़रबैजान, वहां पर एक ज़ांग्रेब कॉरिडोर है उससे घूमता हुआ, इट गोज इनटू टर्की। ज़ांग्रेब कॉरिडोर के लिए अज़रबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई होना है और ज़ांग्रेब कॉरिडोर खाली करना है, अगर वो खाली हो गया तो अज़रबैजान बहुत पावरफुल हो जाएगा, ईरान को पसंद नहीं है वो, तो वो होने नहीं देगा वो, आप भी वहां पर आर्मेनिया को खूब खूब अच्छे से पिनाका ये वो दे रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। टर्की की साइकिल के टायर के अंदर डंडा डालना आपको भी पसंद आता है।
भारत के सबसे बड़े आर्म्स परचेजर अज़रबैजान, सॉरी आर्मेनिया।
एब्सोल्युटली, अब इससे साउथ वाला एक नोड है जो निकलता है, जो चाइना से जाता है किर्गिस्तान पे आता है, तजिकिस्तान से होते हुए इट गोज इनटू अफगानिस्तान ईरान एंड जाता है वापस तुर्की के अंदर। तो देखिए ईरान के इंटरेस्ट के अंदर है कि भाई ये जगह थोड़ी पीसफुल रहे, क्योंकि सडनली ही विल सी हिमसेल्फ कनेक्टेड टू टू कॉरिडोर्स, एंड उसको ये पता है यार अगर चाइना मेरा तेल ना ले भारत ले लेगा, वो बोल रहा है साहब ये जो सऊदी से आप पाइपलाइन बनाओगे जो सॉरी मुंद्रा पोर्ट तक आएगी, आप एक काम करना यार एक बीच में एक रीजनल नोडल स्टेशन बना लो जहां पे मैं भी अपनी डाल दूंगा, तो उसके इंटरेस्ट में रहेगा कि यार ये IMEC ठीक रहे, कुछ ज्यादा इसमें गड़बड़ ना हो, इसको जरा कंट्रोल करके रखो, बिकॉज ही लर्न मनी थ्रू इट ना सर, नहीं तो अगर अमेरिका ने चाइना को सैंक्शन कर दिया ईरान के लिए वो तो छोड़ देगा इसको, एंड ईरान को अगर मेन स्ट्रीम में कोई एक कंट्री लेके आ सकता है सर वो आप ही हो, देयर इज नो अदर कंट्री दैट कैन ब्रिंग इट टू द मेन स्ट्रीम, ये तो सर आपके सेलर्स थे तो ईरान ने छोड़ दिए नहीं तो ठीक है लेट्स फेस इट सो ये या दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम
इन दो कंक्लूजंस के साथ आज की चर्चा को फिर हम विराम यहीं पर देंगे आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आदि को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और आप सभी लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला है वो अगले फेज में अवश्य डाल दीजिए
वोट तो पक्का करिए वोट तो करिए करिए मैंने सुबह 7 बजे एक ट्वीट भी डाला था वोट करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा बंक मारिए ऑफिस को जो मर्जी करिए वोट करिए उंगली पे निशान लगाइए और सेल्फी जरूर लीजिए
ये देखिए
अरे वाह मेरा तो अभी आज है ही नहीं ना सर
हमारा तो पहला था आज
मेरे को शर्म आ रही
7 बजे जाके वोट डाल दिया हमने
नहीं मेरे को अभी है 3-4 दिन है फिर कर लूंगा
आपका क्या सेकंड राउंड में
26 तारीख को सर 26 तारीख
पोल्स ऑन 26th ओके
26th
गुड 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 तो ठीक है साहब यहीं पर विराम देते हैं और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम
जय हिंद जय भारत वंदे मातरम